చక్షురుని ఫలితం ఏమి తస్మశ్రీకురువేణం శ్రీ చైతన్య మనోభిష్టం స్థాపితం ఏమి నిలిచదు స్వయం రూప కదామయృష్ణ చైతన్య ప్రపంచానందరూ హరే కృష్ణ 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 హరి హరి రామ హరి రామ 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 పిచ్చలే శ్లోక భగవాన్ నే బాయా థా तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे प्रिय ज्ञान जो मेरा परम वचन है मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ अर्जुन। इष्टोसि ने दिदम्मति ततो वक्ष्यामि ते, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हित के लिए वो बात फिर से बताता हूँ। कौन सी बात भगवान ने बताई? चार चीज करनी है, मन मना, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। सो अगर आप ये चार चीज करोगे तो परिणाम ये आएगा कि मां में वैसे सत्यम थे, तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। सत्यम थे, मेरा वचन है सत्यम, तो भगवान उस सत्य शब्द को स्थापित करने के लिए फिर से कह दिया कि मैं तुम्हें सत्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो, सीमे तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए। और फिर भगवान इसी महान वचन को लेकर के और एक महत्वपूर्ण संदेश इसके साथ साथ जोड़ करके कह रहे हैं। तो टेक्स्ट नंबर 66 जिसमें भगवान अपना ये परम वचन देते हैं, देयर आर टू श्लोकस, जैसा हमने चर्चा किया ये चाबी के साथ तुलना की गई है। Yes, so X number 66 में भगवान सभी धर्मों को त्याग करने की बात कर रहे हैं और शरणागत होने की जो हम चर्चा किए थे उसके विषय में बात कर रहे हैं फिर से। सो टेक्स्ट नंबर 66 पढ़िए।
समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत।
तो ये फेमस श्लोक है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य, सब प्रकार के धर्म का त्याग करो या फिर सब प्रकार की अपनी जो थियरी होती है, सब प्रकार की अपनी विंजिकल सोच होती है, सब प्रकार का जो अहंकार है, सब प्रकार का जो आसक्ति है, ये सब का त्याग करके मेरी शरण में आओ अर्जुन, मैं तुम्हारे सार समस्त पापों से तुम्हारा नाश करूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा, समस्त पापों का नाश कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा तुम्हारा, सर्व पापों के मोक्ष, सब पापों से उद्धार कर, डरो मत। तो ये भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। भगवान अर्जुन को बहुत स्पष्ट भाव से शरणागति के विषय में कह रहे हैं। हरि भक्ति विलास का जो श्लोक है वहां से आप तात्पर्य पढ़िए।
हरि भक्ति विलास कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभाल लेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप की निरसहाय माने और मनुष्य अपने आप को निरसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावनावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानिक के पालन की आवश्यकता नहीं है, नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से यह व्यर्थ समय गवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण के सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण के सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मासूचः विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्म को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है।
So, प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य यहाँ पर लिखा है। इसमें ये चीज भी बताई है कि कोई सातवें अध्याय में जैसे भगवान ने कहा है कि जब तक कोई व्यक्ति सब प्रकार के पापों से मुक्त नहीं होता और पुण्य अर्जित नहीं करता तब तक वो भगवान की शरणागत नहीं हो सकता। लेकिन भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर वो सब प्रकार के पापों से मुक्त ना भी हो तो कृष्ण उनको सब प्रकार के पापों से मुक्त कर देंगे। भगवान शरणागत होने की जो विधि बताते हैं, अर्थात शरणागत होने के लिए कहते हैं, ये जो श्लोक है हरिभक्ति विलास में, ये शरणागति के 6 अंग है। इसे भी जिसकी चर्चा हमने पहले ऑलरेडी आपसे की है, फिर भी संक्षिप्त में अगर इसको बताया जाए तो भक्तों को चाहिए कि वो अनुकूल संकल्प, अनुकूल वस्तु जो भक्ति के लिए अनुकूल कार्य होते हैं। कई बार देखा जाता है कि कई ऐसे कार्य होते हैं जिसके प्रति हमारा लगाव होता है, जिसके प्रति हमारी रुचि होती है, हम चाहते हैं कि वो कार्य हम अवश्य करें, लेकिन वो भक्ति के अनुकूल नहीं होता तो हमें उसका त्यागना चाहिए। और जो भक्ति के अनुकूल कार्य होते हैं, जैसे कि भक्त का संग करना, सुबह उठ के माला का जप करना, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना नियमित रूप से, तो इन सब कार्यों को जो अनुकूल माना गया है उस सब कार्य को अवश्य करना चाहिए। जनरली हमारा रुचि होता है प्रतिकूल कार्य के प्रति और हमें तपस्या लगती है अनुकूल कार्य के प्रति, लेकिन मन को कठोर करके, मन को दृढ़ करके, वो जो कार्य आपको कठिन लग रहे हो जो कि अनुकूल भक्ति के लिए, उसके लिए अपने आपको प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप तपस्या, आपको भले तपस्या लगे लेकिन अगर वो तपस्या ही कर लोगे आप, तभी भी आपका जो हमारा जो रोग है वो दूर हो जाता है। इसलिए भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल कार्य जैसे कि पोसेपिंग करना, कथा करना, लोगों के साथ धर्म में कथा करना और बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो भक्ति के लिए प्रतिकूल माने गए हैं, तो उन सब कार्य से बचना है। फिर अनुकूल से वसंग और अनुकूल से तथा प्रतिकूल से वजनम रक्षित यति इति विश्वास, रक्षित रक्षिष्यति इति विश्वास। कृष्ण अवश्य कथा करते अवश्य। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि प्रभु जी हम लोग तो कृष्ण भक्ति में डूब रहे हैं, हम तो सर आपके कहने से, हम तो हमारे जो समाज के जो संबंधी लोग हैं, मित्र परिवार, इन लोगों के साथ जो भक्ति में रुचि नहीं रखते, धीरे 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 करके सब हमसे दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे हमसे छूट जा रहे हैं। तो जब हमारी हमारी जब उम्र हो जाएगी, जब हम वृद्ध हो जाएंगे, तो कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा? कई बार हम भक्त लोग कई बार ये विचार करते हैं, हमारी सहायता कौन करेगा, बुढ़ापे में कौन सहारा देगा हमें? आप भक्ति के मार्ग जो सब सामाजिक लोग हैं वो तो हमसे दूर चले गए और हम तो ये देख नहीं रहे हैं कि भक्तों में ऐसा कोई भक्त होगा कि जो जेन्युइन होगा या हमारे प्रति किसी प्रकार का उनका लगाव होगा, क्योंकि भक्त निर्मोही होगा तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए कई बार भक्त लोग सोचते रहते हैं, कई बार भक्त लोग ऐसा प्रचार भी करते हैं जो कि गलत प्रचार है कि भाई आप सब कुछ तोड़ो मत, थोड़ा थोड़ा बचा के रखो, अगर कल उठ के कुछ हो जाए तो हमारी सुरक्षा के लिए। कई बार हमारे गृहस्थ भक्त ऐसा प्रचार करते हैं कि मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आज आप जवान हो इसलिए आप सेवा कर सकते हो, कल जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आप कैसे सेवा करोगे, और तब फिर आपको कोई रखेगा नहीं और आप समाज पे बोझा बन जाओगे, इसलिए आप ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन। ये सारी जो बातचीत है, सारा विचार जो है वो इसलिए आता है क्योंकि इस प्रकार की सोच करने वाले जो भक्त होते हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर या कनिष्ठ है, जो जिनकी श्रद्धा भगवान के प्रति बहुत ही कमजोर है और इसलिए वो माया से आकर्षित होते हैं। अगर रक्षित है तो इसी विश्वास हो भगवान के जो भक्त होता है उसकी रक्षा भगवान करता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी रक्षा हमारे मित्र पड़ोसी ये सब लोग करेंगे, भक्त की रक्षा तो भगवान करते हैं हमेशा। यही तो हम चाहते हैं कि भक्त जो है वो अपने आप को हर एक कार्य के लिए, हर एक छोटा बड़ा जितना भी कोई भी कार्य है उसके लिए अपने आप को भगवान पर अवलंबित करे। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य मुझसे होगा, ये कार्य मुझसे नहीं होगा, ये कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, या इस प्रकार के जो विचार है वो छोड़ देना चाहिए। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद और ये जो संत लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, भक्त लोग, ये लोग इतने आसानी से इतने प्रसन्न चित्त कैसे रह सकते हैं, जैसा हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी, क्योंकि वो हरेक कार्य के लिए कृष्ण पर आश्रित रहते हैं, हरेक कार्य के लिए, हरेक चीज के लिए। कई बार हम कहते हैं भगवान हमेशा रक्षा करेंगे, लेकिन जब हम संकट में आ जाते हैं तो कई बार हम कहते हैं प्रभु जी बात करना तो आसान है, लेकिन जब सही में हमारे पर कोई बात गुजरती है तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जब संकट का समय आता है तो आप डगमगा जाते हो, लेकिन इस समय शास्त्र का, भक्तों का, गुरु का, इन सब का सहायता लेना चाहिए और ये विश्वास को पकड़ के रखना चाहिए कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। और जनरली कृष्ण भी जब सुनते हैं आपके मुख से बार बार, कृष्ण भी जब देखते हैं आपके हृदय में ये भाव चल रहा है कि आप ये विश्वास लेकर बैठे हो कि आप उनको अवश्य रक्षा करोगे, तो यदि भी वो रक्षा तो करते हैं लेकिन वो रक्षा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, वो बंद जाते हैं रक्षा करने के लिए, क्योंकि कोई भक्त उन पर आश्रित है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ पर आश्रित होता है और माँ कोई बहाना बता नहीं सकती बच्चे को कि बेटा मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, कोई बहाना नहीं चलता उसमें, कोई रीजन नहीं चलता। इस तरह से कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने वत्सल है कि उनके शरण में आया हुआ कोई भी भक्त होता है उसकी रक्षा करना उनका सबसे पहला ड्यूटी आ जाता है, फर्स्ट ड्यूटी। और ये भक्त का एवरीडे रिसिप्रोकेशन होता है, एवरीडे एवरी आवर एवरी मोमेंट रिसिप्रोकेशन होता है कि कृष्णा आप मेरी सहायता कीजिए, कृष्णा आप मुझे मेरी रक्षा कीजिए। अगर आप निरंतर इस भाव के साथ रहते हैं तो कृष्णा अवश्य रक्षा करेंगे आपकी, अवश्य रक्षिष्यति इति विश्वासो भोक्तृत्वे वर्णन तथा। भोक्तृत्व वर्णन तथा का अर्थ होता है भगवान पालन करने वाले। तो ये नहीं सोचना चाहिए मुझे हमारी आमदनी कितनी, हमारी आमदनी तो बहुत कम है तो हमारा पालन कैसे होगा, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हमारे घर में तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और मेरा इतना कोई खास इनकम नहीं है, तो हम तो गरीब लोग हैं। ये सब ठीक है, ये सब बाह्य वस्तु है। असल में आपका पालन करने वाला एक ही व्यक्ति है, कृष्ण। आप इसके लिए चिंता मत करने वाला, इसके उदाहरण आपको ऑलरेडी हम पहले दे चुके हैं। आप खोला बेचा श्रीधर का उदाहरण जानते हो कि वो उनके उनके आमदनी से एक पैसा, इसमें से 50% वो देते थे गंगा की पूजा के लिए, और उनका रहने का जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो रहते थे कैसे स्टैंडर्ड में, बहुत साधारण। क्या एक छोटा सा कुटिया था जिसके पर छत नहीं थी और एक बर्तन था पूरे घर में जो भी टूटा हुआ था, चोरी भी वो चोरी ना करे। एक ही धोती था जिसमें थे 11 छेद। तो इस प्रकार से वो बड़े सरलता से जीवन जी। इसका अर्थ क्या है कि प्रभु जी हम भी हमारा छत तोड़ दे, हम भी धोती में छेद कर दे, नहीं। इसका अर्थ यह है कि संतुष्ट होना चाहिए भक्त को, अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं डिमांड करनी चाहिए। और कई बार भक्त लोग अपनी आवश्यकता जानबूझ करके कम करते जाते धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि जितनी आवश्यकता ज्यादा होगी उतना अधिक आपको संघर्ष करना पड़ता है इस संसार में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और उतना अधिक आपका जो समय है वो आप कम बिता सकते हो कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण की सेवा में या कृष्ण के प्रत्यक्ष सेवा में। इसलिए आप उदाहरण देखना चाहिए कि आपके सामने गोस्वामी का उदाहरण देखो, अच्छे गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग संन्यास अवस्था में एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे। तो ये हम ये नहीं कहते कि हमें इस प्रकार से इतना हाई क्वालिटी भक्त बनना है, ऑफकोर्स बनना चाहिए, लेकिन हम इसका उत्तर ये है कि हो सके उतना हमारी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। तो परिणाम ये आएगा कि हमारा जो जो कष्ट है ये हमारा निर्वाह कैसे होगा ये सब ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और जैसे श्रीवास ठाकुर का उदाहरण जानते हैं, भगवान की उनका पालन करते हैं, ये उनका इतना दृढ़ विश्वास। इसलिए भक्तों को ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हम हमारा पालन करते भगवान, और हमारी पत्नी, हमारे बच्चे या हमारे पति, इन लोग का पालन कौन करते हैं? इन लोग का पालन मैं करता हूँ प्रभु जी, मेरा पालन भगवान करते, बाकी सबका पालन मैं करता हूँ? नहीं। उन सबका पालन भी भगवान कर रहे हैं, सबका पालन भगवान कर रहे हैं। अब भगवान का पोजीशन लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु जी, आप कर रहे हो केवल भगवान की सेवा, भगवान आपको निमित्त बना रहे हैं अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए, इसलिए आप केवल ये सोच के कार्य करो कि आप केवल उनके भक्तों की सेवा करो बस। इस तरह से अगर हम जीवन जीते हैं तो इस भावना को हम समझ पाएंगे कि भगवान परम पालक है। फिर मैं गोपतृत्व वर्णन था और श्लोक का कोष आत्मनिक्षेप अर्पण है। आत्मनिक्षेप का अर्थ होता है सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करना। भगवान के चरणों में अर्पण करने का अर्थ होता है आपका मानस देह ग्रह जो पिछमो, आपका मन, आपका शरीर, आपका घर, आपकी इच्छाएं, आपका अहंकार, आपका आसक्ति, आपकी गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस, आपके परिवार, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करना। अच्छा, तो ये अर्पण करने का अर्थ क्या होता है? अर्पण करने का अर्थ होता है जिन चीजों का हमने नाम दिया, आई मीन कोई भी, एवरीथिंग, सब कुछ भगवान की खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए नहीं है। इस तरह से विचार करना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप हमें हमारी सारी इच्छाओं को भगवान के चरणों में रखना पड़ता है। सारा अहंकार, मैं क्यों शरणागत हूँ, तो हमारे भक्तों का एक सबसे बड़ी समस्या होती है भक्त के भाई, हम बड़ा अहंकार होता है, हम झुक नहीं सकते, हम बहुत महान लोग ऐसे। अब संसार में मैं भगवान के द्वारा इस संसार के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट के रूप में प्रकट हुआ हूँ, हम ऐसा मानते हैं। वी आर द यू नो भगवान की देन है संसार को। लेकिन ये हमारी समस्या है, जब तक हम ये मानेंगे कि सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए, सब कुछ मेरे सुख के लिए, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे और निराश रहेंगे। सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। और कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ होता है विनम्रता, दयनीय। ये नहीं सोचना चाहिए, जैसा मैं अभी बता रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रभु जी मुझे मुझे सब आता है, मैं इतना विनम्र हूँ, इतना विनम्र हूँ कि मेरे जैसा विनम्र आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं और कई बार हम विनम्र होने का दिखावा भी करते हैं, मैं बहुत विनम्र हूँ, जान बुझ कर उसके हृदय में ऐसा कोई विनम्रता नहीं होता है, लेकिन वो जान के ऐसा दिखावा। कई बार सोचते हैं कि प्रभु हे तुम बिना किए दयालु जगत संसार है, मौसम पतित प्रभु ना पाए ब्यार। कई बार हम प्रार्थना करते हैं भगवान, मौसम पतित प्रभु ना पाए ब्यार, मेरे जैसा पतित और कोई नहीं मिला, लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या, ये भक्त जो है ना हमारे पास में रहता है उससे तो मैं अच्छा ही हूँ, पर आपको जो है प्रभु आपको ये चीज में बता देता हूँ क्लियर कि वो भक्त, वो भक्त, ये भक्त, वो भक्त, ये लोग प्रभु जी सब देखा है, लोग कैसे होते हैं हमें तो सब पता है, आप नहीं जानते प्रभु जी, हम तो इस्कॉन के सब अंदर की बात जानते हैं, वो कैसा है वैसा, ये सब बकवास की बात है, सब बकवास की बात है। भक्त जो होता है वो अपने आप को इतना विनम्र तुच्छ मानता है कि वो तुच्छ होने का जो विचार है वो केवल दिखावे के लिए नहीं होता है। मीन्स अगर वो घर में चार दीवारों में अकेले बैठे, जैसे आजकल लॉकडाउन में हम लोग बैठ से, तभी भी वो यही मान रहा है कि मैं सबसे तुच्छ हूँ। लेकिन प्रभु जी वो भक्त ऐसा कर रहा है, वो भक्त वैसा कर रहा है, उसके विषय में क्या आप कहते हो, वो हमसे अच्छा है क्या? अरे भाई सारी दुनिया आपसे अच्छी है, सारी दुनिया आपसे अच्छी है, वो भक्त भी अच्छा है। ये भक्तों का विचार होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, कोई गलत नहीं, वो भगवान की सेवा कर रहा है। और त्रुटियां, जहां तक त्रुटियों का सवाल है, गलतियों का सवाल है, तो हम क्या कम है क्या वो दूसरों की देख रहे हैं? हमने भी तो बहुत गलती किया है और हम कर भी रहे हैं, तो वो हो सकता है गलतियों का प्रकार अलग हो सकता है, गलतियों की सीवियरिटी अलग हो सकती है, लेकिन गलती तो सब कर ही रहे। तो इसलिए किसी को गलती, किसी की गलती देख करके उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करना, उनके प्रति शत्रुता का व्यवहार करना, ये सब विचार गलत है। भक्त किसी को ना शत्रु मानता है और ना ही मित्र मानता है, उसके लिए सभी मित्र, सब मित्र, सब मित्र। ये नहीं विचार करना चाहिए तो कई बार अकड़ के रहते हैं हमारे कुछ भक्त। कुछ भक्त हरे कृष्ण बोलते जवाब नहीं देंगे, कुछ भक्त डिस्टेंस जानबूझ करके उसको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, कोई आपको हरे कृष्ण बोलता है और वो भक्त दूसरा भक्त सोचता है मैं तो वैष्णव आचार्य बन चुका हूँ इसलिए अब मैं उनको हरे कृष्ण नहीं बोलता, केवल लीला देता हूँ, यह चलेगा वो सब? उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं, कोई वैष्णव आचार्य नहीं बना है, इसलिए ये नहीं सोचने की आवश्यकता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, बहुत महान दिव्यात्मा हूँ और हमारे मंदिर का एक महाभागवत भक्त की मेरी सूची में नाम है। ये सब अहंकार के कारण होता है। इसलिए भक्त चाहे सीनियर हो या जूनियर, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत सीनियर बन गया, और ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु मैं तो लाइफ टाइम जूनियर ही करूंगा, इसलिए कोई बार जूनियर होने का भी अभिमान होता है, कई बार सीनियर होने का नहीं जूनियर होने का अभिमान होता है। तो इसलिए भक्तों को सब प्रकार के अहंकार से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि ये शरणागति का जो भाव है, तो इस भाव से हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। भगवान अवश्य दयार तार प्रार्थना सुने नंद कुमार, सदंग शरणागति हो जहां, जिसके पास ये छह प्रकार की शरणागति होती है भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। ब्रह्मा जी जो जितने महान हमारे सभी प्रजापतियों के भी पिता, द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ द फर्स्ट रिसीवर ऑफ द मर्सी ब्रह्मा जी, वो चाहते थे कि हम कृष्ण को कृष्ण के लीला में विक्षेप डाले, कृष्ण को भी हम मोहित कर दे, जो कि जो कृष्ण सारे संसार को मोहित कर रहे हैं उनको वो मोहित करना चाहते थे। लेकिन परिणाम ये आया कि ब्रह्मा जी अपनी माया से खुद ही परेशान हो गए और ये समझ नहीं पाए कि असली कौन है और नकली कौन है। वो अपनी गलती के कारण खुद ही पराजित हो गए। अब समझ लो ब्रह्मा जी अगर ये समझ नहीं सकते तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसॉफर क्या समझेंगे कृष्ण को। वो कृष्ण को चैलेंज करते हैं, भगवान कहाँ है, भगवान क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण को इस प्रकार से चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम कृष्ण को किसी भी समय किसी भी अवस्था में कृष्ण से आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो अनंत है। इसलिए सबसे उत्तम यही है कि हम भगवान के शरणागत हो जाए। कृष्ण हम नहीं समझ सकते कि आप किस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं। इसलिए भगवान के साथ संघर्ष करने से अच्छा है कि भगवान के शरणागत हो जाना। जैसे पहले हमने एक आपको बताया था उस चीज के विषय में कि एक होता है कृष्ण की इच्छा का पालन करना, दूसरा होता है भगवान की इच्छा का, हमारी इच्छा का, कृष्ण की इच्छा और हमारी इच्छा, ये दोनों में संघर्ष होता है कि मैं चाहता हूँ ये, कृष्ण चाहते दूसरा हो, भगवान चाहते कुछ और, हम चाहते कुछ और, अब क्या होगा, हम संघर्ष करेंगे, नहीं हम, मैं आपको दिखा दूंगा कि भक्तों का स्थान भगवान से महान है, मैं आपको दिखा दूंगा, कुछ नहीं दिखा पाएंगे आप, अब कुछ नहीं दिखा पाएंगे। कृष्ण की इच्छा और भक्तों की इच्छा में जब स्पर्धा होती है, जब स्पर्धा का अर्थ जब हम ये करते हैं कि भक्त प्रभुपाद जैसे भक्त होते हैं तो कृष्ण की इच्छा से विपरीत सोचते हैं, लेकिन जो कमजोर भक्त होते हैं वही कृष्ण से स्वतंत्र इच्छा प्रस्तुत करते हैं। अब कृष्ण से स्वतंत्र इच्छा होगा तो क्या होगा, आप संघर्ष करोगे और संघर्ष करने के पश्चात क्या होगा, आप थक जाओगे और थकने के पश्चात क्या होगा, आप मान लोगे नहीं कृष्ण हमसे तो कुछ नहीं हो रहा है, आप ही महान हो, जय हो आपकी, नहीं। सो व्हाई टू जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, सिंपली एक्सेप्ट व्हाट कृष्ण वांट्स, कृष्ण के मान लो कृष्ण की बात, कृष्ण जो कहते हैं उसको स्वीकार कर लो, वो आपका भलाई सोचेंगे ना, वो आपका आपका दुखी थोड़ी करेंगे। सो हमारे जो टाइनी एफर्ट्स होते हैं कृष्ण के साथ, कृष्ण के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करने के, ये सब प्रकार की ये जो प्रयत्न उसको त्याग करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण हमारे लिए उत्तम मानते हैं हमारे जीवन के लिए, वो हमें अवश्य देंगे। वो सारा हिसाब किताब रखेंगे अपने पास कर्मों का, और उस तरह से आपको सहायता करेंगे। वो आपको सुखी करना चाहते हो, दुखी नहीं करेंगे। जब तक हम प्रयास करेंगे कृष्ण के साथ झगड़ने के लिए, हम उतनी ज्यादा दलदल में फंसे जाएंगे। कृष्ण की माया जो है उसको आज तक कोई लांग नहीं पाया, हम क्या लांग पाएंगे। लेकिन जो भगवान की शरणागत मार नहीं, वही प्रपद्यंते, जो कृष्ण की शरणागत हो चुका है वो व्यक्ति माया में दाम चढ़ाती थे। कितना आप करोगे कृष्ण के साथ फाइटिंग? जैसे जिस तरह से आप कभी गवर्नमेंट सरकार का विरोध नहीं कर सकते, इस तरह से आप कृष्ण का विरोध नहीं कर सकते। जैसे सरकार में कानून होते हैं, फिर पुलिस होती है, मिलिट्री होती है, कहाँ आप अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या करेंगे? पुलिस आएगी, पुलिस को नहीं मानोगे, पुलिस पे पत्थर फेंकोगे तो मिलिट्री आएगी, मिलिट्री से आप सुनने हो तो आपको सजा मिलेगी। तो क्या परिणाम है? वी कैनॉट चैलेंज कृष्णा। जब ब्रह्मा जी कृष्णा को समझ नहीं सकते, ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि जानंतु एव जानंतु, जो ऐसा कहते हैं कि कृष्ण, मैं कृष्ण को समझ गया, मैं कृष्ण को जान गया, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनको मेरा प्रणाम, तो जान गया तो थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन मैं ब्रह्मा चार मुख वाला ये डिक्लेयर करता हूँ, ये स्टेटमेंट देता हूँ कि मैं ब्रह्मा कृष्ण को नहीं जान सकता। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड ओनली सरेंडर टू कृष्णा। कृष्णा में शरणागत होने के लिए आदेश दे रहे हैं। सिंपल, ऐसे तो लगता है बड़ा सिंपल है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा इंटरनल रिएक्शन क्या होता है? शरणागत, शरणागति का अर्थ होगा आप मुझे त्याग करवाएंगे? प्रभु मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा बोझा हमारे सिर पे होता है, कौन करेगा ये सब? लेकिन हमारा माया मन हमारा जो होगा वो आपको ऐसा कहेगी, देखो ये भक्त लोग आएंगे, गुरुजन लोग आएंगे, शास्त्र कहेंगे शरणागत हो, देखो तुम इन सबके इनके ये बातों में मत आना, तुम मेरे मेरे ही सिकंजे में रहो, और मैं क्या करूंगी, मैं एक अच्छा अवसर प्राप्त होकर के रोज तुम्हारे सिर पर लात मारूंगा। ये माया का विचार। अगर हम कृष्ण के शरणागत नहीं होंगे तो माया रोज आपको एक लात मारेगी। आपको लगता है कि नहीं नहीं हम तो बड़े प्रसन्न है, देखो हमारे पास बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां है, आलिशान घर है, सब प्रकार की इंद्रिय भोग की सुविधा है, जितना धन है हमारे पास। अरे भाई माया आपको एक रोज एक लात मार रही है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। कृष्ण की शरणागत होने पर ही हम इससे निकल सकते हैं। इसलिए शरणागति का जो सिद्धांत है उसको कोई त्याग नहीं कर सकता। अगर आप शरणागति, कोई राजा का शरणागत होता है, जैसे प्रभा जी का बताए कि वेदर यू सरेंडर टू मोनार्की, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, आपको शरणागत तो होना ही पड़ेगा। देयर इज नो लाइफ, शरणागति के बिना जीवन नहीं है। लेकिन हम सबको कहते हैं कि तुम परमेश्वर को शरणागत हो, हम सबको ये कह रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नो आई सरेंडर टू नो वन, मैं किसी के शरणागत नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। एक भी व्यक्ति ऐसा है नहीं कि जो शरणागत नहीं हो सकता, अर्थात वो किसी को शरणागत नहीं है। केवल ये परिवर्तन होगा कि आप किसी और को शरणागत होंगे, अगर भगवान को नहीं होंगे तो किसी और को शरणागत। लेकिन हम कह रहे हैं सब भक्तों को अर्थात समाज को कि जो सुप्रीम ऑब्जेक्ट है अर्थात जो सर्वोच्च शरणागति का जो आश्रय है वह भगवान, उनके शरणागत होना चाहिए। अगर ऐसा कोई शरणागत लेता है तो महात्मा बहुत दुर्लभ बन जाता है। सबके लिए शरणागति होनी चाहिए, सबके लिए। कृष्ण ये नहीं कहते अर्जुन केवल तुम ही मेरी शरण में आ सकते हो और मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, नहीं, कृष्ण सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए। कृष्णा अर्जुन को भगवान ने टारगेट बना करके भगवद गीता बताई, लेकिन भगवद गीता सारी मानव जाति के लिए। तो अभी कोई भी प्रश्न कर सकता है कि अर्जुन तो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो गया था, तो फिर भगवान ने अर्जुन को ये क्यों कहा कि अर्जुन मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। वो तो ऑलरेडी भगवान ने बोला था कि तुम तो अलग हो, तुम तो पाप से मुक्त हो। अब वापिस वहां पर भगवान ये क्यों कह रहे कि हम स्वयं सर्व पाते हो? भगवान ये इसलिए कह रहे हैं कि वो उनके माध्यम से हमको कह रहे हैं। यहां तक कि संसार में जब तक हम रहेंगे किसी न किसी प्रकार से जो पाप होता है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। चाहे अब अर्जुन जितना कोई महान व्यक्ति भी बन जाता है लेकिन संसार में हर एक कार्य में दोष लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मेरी शरणागत हो जाओ, ये उनकी कृपा है। कृष्ण इज टेलिंग एवरीवन, हम में से सबको भगवान कह रहे हैं यू रास्कल यू गिव अप ऑल योर नॉनसेंस एंड सबमिट टू मी। सब प्रकार की तुम्हारी जो गलत विचारधारा है उसको सब त्यागो। प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि मैं तो कब का शरीर छोड़ दिया होता लेकिन भगवान ने देखा कि दिस रास्कल इज डूइंग समथिंग गुड फॉर मी सो लेट मी हेल्प हिम। भगवान ने देखा प्रभुपाद विनम्रता से कहते हैं कि ये धूर्त मेरे लिए कुछ अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है तो चलो उसकी सहायता करते हैं। तो कृष्णा इज मर्सीफुल टू एवरीवन, सबकी सहायता करने के लिए तैयार है। भगवान कहते हैं कि तुम सभी मेरे पुत्र हो तो तुम इस संसार में कष्टमय जीवन में क्यों दुखी हो रहे हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब प्रकार का सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो आप भगवान के पुत्र है, आप भगवान जैसा उत्तम प्रकार का ऐश्वर्य मृत्यु के बिना सुखी जीवन जी सकते हो। तो अब कृष्ण चाहते कि क्यों यहाँ पर भटक रहे हो, क्यों ये आपकी इधर जाओगे तो कोरोना परेशान करेगा, उधर जाओगे तो कोरोना प्लस परेशान करेगा, इस साइड जाओगे तो कोरोना प्रो परेशान करेगा, क्यों ये सब? Why to just disturb ourselves with such things? हम पहले आपको बता चुके हैं कि हमें क्या लगता है कि कोरोना गया है, आया है, अभी चला जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोरोना का भाई दूसरा कुछ आएगा या किसी और प्रकार की समस्या है। समस्या तो नाम बदलती रहती है लेकिन आती हमेशा रहेगी। इसलिए कष्ट में जीवन में केवल उतने तक जब तक रहो। अभी देखो यहाँ रहने का तो विचार है ही नहीं कि हम यहाँ रहेंगे ऐसे समाज में। अब शरीर तो है तो क्या करे, मरना तो है नहीं, भगवान ऐसा तो कह रहे कि शरीर छोड़ दो, तब क्या करे? रहना है नहीं, मर सकते नहीं, तो अब करना क्या? अब कर एक ही कार्य हो सकता है बस, क्या? अब जब तक जिंदा हो तब तक प्रचार करो बस, जितने हो सकते उन लोगों को भगवान के विषय में बताओ। लेकिन फिर हमारी इच्छाओं का, अरे भाई देखते नहीं संसार में सब लोग रो रहे हो और अभी अपनी इच्छा की पिंपुड़ी बजा रहे हो, उसका बिगल बजा रहे हो, मेरी इच्छा क्या फायदा? क्या करोगे तुम अपनी इच्छा को पूरी करके? इससे अच्छा है जितना जीवन आपके सामने पड़ा है, जितना शरीर हमारे पास है, जितना साल मंथ दिन घंटे जितने भी हमारे पास है उसका उपयोग करो कृष्ण के चिंतन के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, प्रचार के लिए। तो उस तरह से जीवन को यापन करना चाहिए। पैराग्राफ बता रहे हैं कि वन में थिंक, कोई ये सोच सकता है कि हम कृष्ण को शरणागत हो रहा है सो वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पालन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऋण होते हैं ना हमारे, इसका कर्जा कौन चुकाएगा, देवताओं का, तो हमारी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं ये नहीं सोचना कि तुम मेरी शरणागत हो जाओगे तो तुम असुरक्षित हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्या आ जाएगी। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा मुझे, मैं तुम्हें सब प्रकार का सुरक्षा प्रदान। तो कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं बुद्धि का प्रयोग करो, कुत्ते बिल्ली जैसे मत बनो, मेरी शरण में आ जाओ। तो भक्तों का ये विचार होना चाहिए कि इसी प्रकार से सबको ये जो महत्वपूर्ण संदेश है सबको दिखाना चाहिए। प्रभुपाद जी का लव संदेश में कहे थे कि वन ऑफ हिज लेक्चर्स कहा कि सुख का शोध, सुख की प्राप्ति के लिए आपका अपना जो प्रयास है उसका त्याग करो, मेरे शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ये सारी भगवद गीता का यही सार है, यही कृष्ण भावना मूर्त है। सुख प्राप्ति करने के लिए हमारे अपने अपने जो प्लान है उस सब प्लान को त्याग करो। नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं प्रभु जी, आपको लगता है ऐसा कि आप, क्योंकि आप नहीं कर पाए, हमें तो पता है कि हम कर सकते हैं। नहीं, आपका प्लान सुखी होने का, सब जो लोग ऐसा सोच रहे थे सबने आपको इंटरनेशनल लॉकडाउन क्रिएट करके बता दिया, देखो तुम सुखी कैसे हो सकते। तुम्हारा कोई प्लान काम नहीं करेंगे, इसलिए बेस्ट प्लान यही है कृष्ण को शरणागत हो जाओ और वो आपको आपकी इच्छा जो है उससे कहीं अधिक देंगे। आप कई बार हम सोचते हैं बड़ी इच्छा से कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एक व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पास जाकर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप, मेरा बहुत रो रहा था, तड़प गिर गिर कर सिर पटक पटक करके प्रार्थना कर रहा था। बाजू में एक भक्त था, वहां पर बैठा था, वो देखा कि क्या बात है, कितना अच्छा भक्त है, सिर पटक पटक करके रो करके भगवान से उन्होंने विनय कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सही में ये बड़ा अच्छा तीव्र भक्त है। जाकर उसको पूछा, अगर आपको बुरा नहीं मानो तो मैं जान सकता हूँ कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हो, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मैं एक ही प्रार्थना करा क्या, बोले मैंने 700 रुपए सैलरी वाली नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू में मैं पास हो जा, ये सोचता। वो जो भक्त बाजू में ये क्या है बड़ा प्रार्थना देगा, मुझे लगा कि बहुत बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। बाद में फिर उसको समझाया, तुम जानते भी हो कि तुम क्या मांग रहे हो, ये जगन्नाथ है, ये सारी सृष्टि के स्वामी है, और मांगा मांगा तो तुमने केवल 700 रुपए की नौकरी मांगी। ये हमारी प्रॉब्लम यही है, हम सोचते कि हे प्रभु मेरे बेटे बेटी का शादी हो जाए, हे प्रभु मेरा ये हो जाए, हे प्रभु मेरा बिजनेस ऐसा हो जाए, हे प्रभु वो हो जाए। अरे क्या मांग रहे हो ये सब, भगवान आपकी इच्छा के कहीं अधिक उत्तम वस्तु आपको दे, उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई अच्छा, जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है, अगर उसके हाथ में से खिलौना गिर गया वो रोना शुरू कर दिया, अब उसको ऐसा मांगो, उसकी इच्छा क्या है, बस वो खिलौना मुझे वापिस हाथ में दे, वो रोता रहेगा, चिल्ला चिल्ला के रोएगा। अब जो माता होते है वो लोग क्या सोचे, क्या कितना पागल है आदमी, एक खिलौना गिरने पर इतना इतना दुखी हो जाता है, इतना रो रहा है। अभी उसको पता ही नहीं कि जीवन क्या है, अर्थात उसको पता ही नहीं कि कृष्ण भक्ति क्या है। हमें, हम लोग को ये समस्या है, हम मटेरियल चीज जो है उसके लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतना इच्छा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हम इतना मेहनत करते हैं और मिलने पर सुखी हो जाते हैं, नहीं मिलने पर दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि लेट कृष्ण डिसाइड, ये क्या लगा के रखा हुआ है भक्ति के मार्ग में भी, ये आई वॉन्ट दिस आई वॉन्ट दिस आई वॉन्ट दिस आई वॉन्ट दिस, वॉट इज दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। कृष्ण विल, बाद में कृष्ण बोला ठीक है, ऑल राइट टेक इट। कृष्ण कहते हैं यू नो गिव अप ऑल दिस नॉनसेंस, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे क्या है इसका, वॉट इज दिस। भगवान कहते छोड़ दो, सर्व धर्म मेरा शरण ले लो, वो नहीं करना है हमें। उल्टा भगवान को कहते हैं मुझे ये करने देना प्रभु, प्लीज मुझे ये कर देना भाई से, हे प्रभु आप महान हो लेकिन आप मेरी सहायता कीजिए, हे प्रभु आप महान हो लेकिन आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी सारी इच्छा पूरी कर दीजिए। लेकिन जब बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति मांगता है तो भगवान बोले ठीक है जा ले जाओ, पर इज वेरी मर्सीफुल, इज आस्किंग सर्व धर्मान परित्यज्य। कृष्ण आपको सब प्रकार की सुरक्षा देते हैं, बट नॉट एज मच एज ही वॉन्ट्स, बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट इट। This is wonderful statement by Prabhupada. Krishna आपको सुरक्षा देते हैं, लेकिन उतनी सुरक्षा नहीं दे सकते या नहीं देते जितनी सुरक्षा भगवान देना चाहते हैं। भगवान सुरक्षा देना चाहते उतने नहीं दे सकते। अरे कभी ऐसा कैसे हो सकता कि भगवान कुछ देना चाहे सुरक्षा और वो सुरक्षा आपको दे नहीं सकते? वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप स्वीकार नहीं करोगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, आपको उतनी ही सुरक्षा देते हैं जितनी सुरक्षा आप चाहते हो भगवान से। अगर आप पूर्ण सुरक्षा चाहते हो तो कृष्ण पूर्ण सुरक्षा देंगे। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रीति दे। तो इसलिए हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए जितने भी प्रोटेक्शन प्लान है हमारे खुद के, उसको त्याग करके कृष्ण की शरणागत हो जाना चाहिए। अगर आप 10% शरणागत हो तो भगवान आपको 10% ही सुरक्षा दे पाएंगे। फिर आप बोले प्रभु मैं तो भले ना 10%, वो तो 20% देना चाहिए ना। अरे वो 10% आप एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए वो नहीं दे रहे। वो आपको उतना ही दे रहे जितना आप चाहते हो। कई बार एक भक्त लोग पूछते गुरु महाराज को कि क्या गुरु महाराज जैसे परमात्मा के रूप में भगवान भक्त के साथ रहते हैं वैसे गुरु भी शिष्य के साथ रह सकते इस तरह से? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि अवश्य रह सकते हैं अगर तुम चाहो तो, अगर तुम चाहो तो ये हो सकता है। और साथ साथ में भक्ति को ये भी जानना चाहिए कि जैसा कृष्ण की शरणागत हो जाते हो तो सारी आपका कर्म, आपके ग्रह की दशा, आपका भविष्य, आपके विधि के विधान सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। यहाँ तक कि आपके कर्म समाप्त हो गए हैं, आपकी सांस खत्म हो गई है, अब आपकी मृत्यु की तैयारी है, अब मरने वाले हो। अब कृष्ण चाहे तो इसको रोक भी सकते हैं क्योंकि वो सब प्रकार के नियमों से पर है। इसे कई बार भक्त लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत परेशान रहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी में जाकर दिख क्या हूँ, ग्रहों की क्या दिशा है, ग्रहों, अरे सब सही है, हम ये नहीं कहते कि वो सब गलत है एस्ट्रोलॉजी और उसका जो ज्योतिष शास्त्र सब, नहीं सब सही है। एस्ट्रोलॉजी भी सही है, ज्योतिष शास्त्र भी सही है, वो सब आपको बताएगी, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जो शरणागत भक्त होता है उसके सामने एस्ट्रोलॉजी भी काम नहीं करती है, उसके सामने बड़े बड़े ज्योतिष भी काम नहीं करते, तो क्या फायदा फिर? क्यों? क्योंकि कृष्ण सब नियमों से पर है। ये राहु शनि साढ़ा सात ये सब क्या है? हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे भगवान के सामने, कुछ नहीं करने देंगे भक्त को, क्योंकि इन लोग का उनका वैल्यू क्या है कृष्ण के सामने? ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों शनियों को जन्म देते और एक एक सेकंड में जन्म देते, एक सेकंड में खत्म कर देते, भुतवा भुतवा प्रलय थे सबका प्रलय कर देते। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस शनि एंड साढ़ा सात एंड राहु एंड केतु एंड They are all useless in a way for those who are fully surrendered to Krishna. इसलिए भगवान जो है वो आपके सब प्रकार की जो आपकी डेस्टिनी है उसको चुटकी में बदल सकते हैं। इसलिए उन पर शरणागत होना से प्रयास करो। Don't depend on anything else. अपने अपने आप पर शरणागत मत हो, किसी और पर शरणागत ना हो, केवल एक ही व्यक्ति पर शरणागत हो, कृष्ण बोलिए। अब यहाँ पर आप देखो ये जो श्लोक भगवान उच्चारण किया है सर्वधर्मान प्रीति, ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का एंट्रेंस माना जाता है। जैसे आप समझ लो कि आप लोग भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं तो आप में से हो सकता है कि जरूरी नहीं कि सब, लेकिन कुछ भक्तों की ये इच्छा हो सकती है कि वो आगे जाके श्रीमद् भागवत का कोर्स भी करे, भक्ति वैभव कोर्स भी करे, हो सकता है कोई भक्त, या तो फिर कई बार भक्त देते अरे प्रभु जी एक कोर्स करते करते तो मुंह में फैन आ गया, तो आप आगे का श्रीमद् भागवतम का कोर्स करने का बोल रहे हो, बोले हम तो बेहोशी हो जाएंगे। लेकिन शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ये अमृत समान है। तो कोई भक्त जो आगे बढ़ना चाहते है श्रीमद् भागवतम की स्टडी करने के लिए या फिर पढ़ रहे, तो यहाँ पर ये कनेक्शन आप अनुभव कर सकते हो। भगवत गीता समाप्त होती है एक रूप से इस श्लोक के द्वारा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, और श्रीमद् भागवत शुरू होता है धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम इस श्लोक के साथ जन्माद्यस्य, उसके बाद धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र, अर्थात सब प्रकार के जो यहाँ पर है सर्वधर्मान परित्यज्य और श्रीमद् भागवतम में धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र, अर्थात सब प्रकार की जो धार्मिक जो सिद्धांत है, विशेष करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो है ये चार चीज ये उठा के फेंक देने के लिए श्रीमद् भागवतम कह रहा है, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जस्ट सिंपली थ्रो देम आउट, उसको उसको हटा करके सब धर्म परिचय, तब जाके श्रीमद् भागवतम में एंट्री ले सकते हो, तब जाके श्रीमद् भागवत को समझ सकते हो, सब प्रकार की डिप्लिसिटी, सब प्रकार का मटेरियल डिजायर, सब प्रकार के ज्ञान, कर्म, ये सब चीजों को हटा कर केवल शुद्ध भक्ति की बात करनी है तो श्रीमद् भागवत खोलना, अन्यथा मत खोलना। तो ये चीज यहाँ से आप समझ सकते हो, ये कनेक्शन है इसका, यहाँ से समाप्त होता है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम शुरू होता है उस श्लोक के साथ। So, I know I took long time to speak about this sloka. Now, devotees can ask any question if they have, or they have noted down anywhere. Yes, please go ahead.
Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, खुद में विश्वास नहीं होने के कारण भी लोग ऐसे सोचते होंगे ना, या मतलब कि बुढ़ापे में उनका क्या होगा, who will protect them, because they do not have faith in themselves, not that they don't have faith in Krishna, but then it is like they may not have faith in themselves in the sense in their purity, in their austerity बोलो या in their devotion they may not be having full faith, so वो भी एक reason हो सकता है ना।
हाँ, लेकिन वो reason कमजोर reason है, वो ज़्यादा solid reason नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पर ऐसा कोई condition apply नहीं किया है कि तुम्हारी faith अगर strong होगी, तुम बहुत austere होगे, बड़े तपस्वी होगे, पाप कर्म से मुक्त होगे, महाभागवत महात्मा होगे, तब जाकर मैं तुम्हें protection दूंगा, ऐसा कोई condition apply किया ही नहीं है।
ओके
ओके, और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा,
आई कैन हियर यू प्रभु।
हाँ प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि कृष्ण पे हमें पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए और हमें कृष्ण बहुत कुछ दे सकते हैं, बट हमारी मांगे छोटी छोटी होती हैं, तो हमें छोटी छोटी मांगे आई मीन भौतिक जगत की जो नहीं है, और एक तरफ हमें ये भी बताया गया कि हमें पूर्ण रूप से कृष्ण पे निर्भर रहना है, तो हम मटेरियल लाइफ में जो भी हमारी ड्यूटीज हैं वो सब कर रहे हैं, तो उस तरफ कृष्ण पे पूर्णतः निर्भर हैं। निर्भर होने का कहीं ना कहीं तो यही मतलब हुआ कि कृष्ण आप ये जो भी हमारी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है वो देख लेना, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग गैप हो रहा है मुझे।
हाँ, भगवान एक बार श्री प्रभुपाद जी ने ये बताया था सब भक्तों को कि जब आप भगवान से कभी प्रार्थना करो किसी भी चीज के लिए, कुछ भी हो, फॉर एनीथिंग, जब आप भगवान से प्रार्थना करो तो प्रार्थना शुरू करने से पहले ये सब ये बोलकर प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्णा इफ यू डिजायर सो, कृष्णा यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये प्रार्थना को सुनना, आपको जो ठीक लगे उस अनुसार करना। तो यहाँ पर हमारे जो रूटीन लाइफ में जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर ज्यादा सोचने से ऐसा नहीं कि भक्त मूर्ख बन जाता है, नहीं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कहीं पर भी अटेम्प्ट नहीं डालता, ज्यादा इतना परिश्रम संघर्ष नहीं करता, उसके लिए स्ट्रगल नहीं करता, अर्थात वो अपना रूट नॉर्मली जिस तरह से उसका जीवन यापन होता है वो करता रहता है, उसके सामने जो बाधा आती है वो बाधाओं को भी झेल लेता है, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि कृष्ण मेरे लिए जो उचित होगा, वॉट एवर विल बी गुड फॉर मी, कृष्ण विल सेंड इट टू मी, वो निरंतर सोचता रहता है कृष्ण। अगर समझ लो किसी को कोई कष्ट आ गया लाइफ में किसी भी तरह का, तो वो ये नहीं सोचता कि हाय हाय अब मैं क्या करूंगा, वो ऐसा सोचता है कि भगवान ने मुझे इस परीक्षा में रखा है तो मुझे गुरु साधु शास्त्र का आदेशों का अनुसार इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए, फिर वो उस प्रकार से कार्य करता है। फिर वो ये नहीं सोचता अब कृष्ण तो मुझे इसमें से निकाल देंगे, वो ऐसा सोचता है कृष्ण आप जैसे ठीक मानो वैसे नित्य दास प्रति द्वार अधिकार। देखो ये एक हायर अंडरस्टैंडिंग में, ऑफ कोर्स ये अंडरस्टैंडिंग सबके लिए नहीं होती, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ हायर अंडरस्टैंडिंग। अश्लीष्य वा पादरताम विनष्ट माम, ये हायर अंडरस्टैंडिंग क्या इसका अर्थ होता है कि हे प्रभु अगर आप चाहो तो मुझे आलिंगन दे सकते हो, या तो पादरताम विनष्ट माम, आप पांव के आपके पांव के नीचे कुचल दो मुझे, जस्ट क्रश मी, अदर्शनान मुझे दर्शन नहीं दे करके मर महताम, हे कृष्ण मैंने इतना जीवन भर आपकी सेवा की, आपके लिए मैंने शरणागत रहा, आप जैसे बोले वैसे ही मैंने किया, अब मुझे जीवन के अंत समय में भी आप मुझे आपकी कृपा नहीं दोगे, आपने बोला था ना कि बाद में मैं कृपा दूंगा तो आप देते ही नहीं हो, नहीं अदर्शनान मर महताम, वो नहीं देंगे तभी भी न मत प्राणनाथस्तु सही बना, फिर भी हे कृष्ण आप ही मेरे प्राण, दिस इज शरणागति। अर्थात संसार में चाहे कुछ भी हो जाए हम कृष्ण पर अवलंबित रहते हैं, इसके लिए हम इसका अर्थ ये नहीं कि हे कृष्ण मेरे खाते में इतने रुपए आ जाए तो मैं अच्छा ये सेवा करूं, मेरे घर में फर्नीचर की आवश्यकता है तो कृष्ण 2-5 लाख रुपए भेज दो तो मैं घर में फर्नीचर बनवा दूं, अरे ये इस प्रकार का नहीं सोचता है भक्त। भक्त सोचता है कि कृष्ण मैं आपकी प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकता है मैं सब करने को तैयार हूँ, और इसके कारण फिर उसका जो आसक्ति होता है आकर्षण कि मुझे मेरा मान बढ़े मेरा सम्मान बढ़े प्रभाव करे, ये सब चीजों से तो इस इन सब चीजों से वो अपने आप को मुक्त कर देता है। इसलिए अगर फिर भी समझ लो कि कोई व्यक्ति बीमार है या कोई व्यक्ति कष्ट में है, अगर आप उस व्यक्ति के लिए कृष्ण को प्रार्थना करते हो तो कृष्ण बुरा नहीं मानते, आ गया ना लाइन पे, देखा कृष्ण ऐसा नहीं कहते, कृष्ण इज वेरी काइंड, इज लाइक अ फादर, देखते कोई मेरी शरणागत है कुछ मुझसे मांग रहा है तो मैं वो सुनूंगा। लेकिन बाद में जो मांगने वाला भक्त होता है ना वो धीरे 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 समय जाने पर वो मांगना बंद कर देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि कृष्ण एनी वे कृष्ण मेरी रक्षा कर ही रहे हैं। फिर भी कृष्ण को मांगने पर कृष्ण को अच्छा लगता है, सो दैट इज फाइन। जैसे गोपियां भी और यशोदा माता सब लोग कृष्ण को प्रार्थना करते थे, कृष्ण रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, तो रक्षा मांग रहे हैं तो इसका अर्थ नहीं कि कृष्ण रक्षा करोगे तभी करेंगे, नहीं कृष्ण रक्षा करने ही वाले हैं, लेकिन वो रिसिप्रोकेशन होता है, कृष्ण प्लीज हेल्प मी, यस आई विल देयर, आई विल बी देयर। अगर आपको आपका बच्चा कहता है कि पापा मुझे सहायता कीजिए तो आपको तो अच्छा लगता है ना, देखो मेरा बेटा मुझसे मांग रहा है, इट्स लाइक दैट। सो वी शुड नॉट वरी अबाउट अवर डेली रिक्वायरमेंट्स, एनीवे कृष्ण इज प्रोवाइडिंग। Is that your question?
Yes, yes, Prabhu ji, I got it. और एक और था प्रभु जी, एक भक्त से, एक भक्त ने मुझसे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में चर्चा किया था, तो चर्चा में मैंने उनसे सजेस्ट किया कि आप एक टर्म प्लान ले लीजिए। टर्म प्लान मीन्स रिस्क कवर होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ आपको मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तब उन्होंने ये कोट किया मुझे, बोले भगवान तो कह रहे हैं कि तुम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, तो वाई शुड आई गो फॉर टर्म प्लान, मुझे क्यों लेना चाहिए, मैं तो पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत हूँ। सो फिर हमारी बात आगे नहीं चल पाई, पर मुझे ये सडनली अभी याद आ गया, तो इसमें हमको क्या जवाब देना चाहिए? आई मीन हमको ऐसा तो है नहीं कि विष्णु पे पूर्ण रूप से निर्भर तो रहे। हाँ हाँ,
हमें ये कहना चाहिए उनको कि भक्त पूर्ण रूप से निर्भर होते, इसका अर्थ ये नहीं होता कि भक्त मूर्ख होते। भक्त कृष्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि भक्त मूर्ख होता है।
राइट राइट,
भक्त अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर आप समझ लो कि आप जो भी व्यक्ति है, इतना भी कोई बड़ा 6 गोस्वामी जैसा तो कोई महात्मा नहीं है कि वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित है। भगवान ये कहते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, हनुमान जी को अर्जुन को आप देखो उनके उदाहरण, वो अपनी कुशलता, आप संसार में जी रहे हो तो आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। प्रभुपाद ये भी कहते हैं, जैसे आप भारत सरकार के अंडर में रहते, कुछ लोग कहते हैं हम कृष्ण को शरणागत है इसलिए अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम गलत काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं सरकार की बात, क्योंकि हम सरकार को तो शरणागत है ही नहीं। कुछ कम बुद्धि वाले होते हैं, भक्त होते हैं लेकिन कम बुद्धि वाले, क्या बोलते हैं तो कृष्ण ये सरकार जो होती है वो तो सब सूत्रों के द्वारा बनी है इसलिए हम उनकी बात को नहीं मानते। नहीं, प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि भक्त मूर्ख नहीं होता है, शरणागत होता है लेकिन मूर्ख नहीं होता है। इसलिए अगर टर्म प्लान भी अगर आप लेते हो और अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो या फिर आप किसी अलग और अलग अलग प्रकार की जो सुविधा करते हो तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लिविंग स्टाइल, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसका कोई, अगर कोई व्यक्ति अपने, जैसे आप देखो एक टर्म प्लान आपकी सेफ्टी के लिए है अगर ऐसा मान के चलो, तो रूप गोस्वामी का उदाहरण आप देखिए, रूप गोस्वामी ने उनके पास नौका भर भर के सोना मोड़ थी तो उन्होंने किस तरह से धन का रिवाइड किया। और टर्म प्लान लेने को मना करेंगे लेकिन 50% धन भगवान की सेवा में देने की बात करोगे तो भाग जाएगा। लेकिन रूप गोस्वामी 50% उनका जो धन है वो भगवान के सेवा में दे रहे और 25% उन्होंने रखा था अपने परिवार को रोको के लिए और बाकी का जो चौथा भाग था वो उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखा था। सो दिस टर्म प्लान एंड ऑल दिस अदर सिचुएशंस आर फॉर योर सिक्योरिटी, सो इट इज वेरी वेरी मच इन लाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
Yes,
प्रभु जी आपने लेक्चर में एक बात ये बताई कि भगवान ही सबको देखते हैं तो हमें अपने आप को उसमें प्राउड में फील करना चाहिए कि मैं किसी का प्रोटेक्ट करते हैं या समथिंग लाइक दैट। ऐसा तो मेरा एक इस पर एक थोड़ी दुविधा है कि मैं काफी सालों से बाजू में एक क्लब हाउस है तो उसकी छत पे दाने डालती हूँ तो कबूतर बहुत सारे आते हैं रोज। और ये बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन अभी 2 दिन से मेरे पास दाने नहीं बच रहे हैं तो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। तो कबूतर रोज आके 1 घंटे तक आगा के इंतजार करके चले जाते हैं तो इसमें ये देख के थोड़ा दुख होता है ऐसा। तो वो मान ये क्या ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को उनका क्या बोलते हैं उनका पालन मैं करूं, ऐसा फीलिंग हुआ इसमें कि क्या है ये?
देखो दुख होना ये तो भक्त का स्वभाव है। अर्जुन भी दुखी हो गया था कि इन लोग को मैं मारूंगा कैसे, तो ये प्रभुपाद इसको वैष्णव क्वालिटी मानते हैं कि किसी भक्त जो होते हैं कि उसको किसी के कष्ट को दे नहीं सकते। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में आपको प्रयास करना चाहिए कि अगर आप कहीं से भी व्यवस्था कर सकते हो तो आपको करना चाहिए उन लोग को खिलाने की व्यवस्था। अगर किसी सिचुएशन में ऐसी है कि आप नहीं कर पाएंगे या क्योंकि आप लॉकडाउन में फंसे हो या फिर आप किसी प्रकार का लाइफ रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो इसके कारण अगर आप ये जो सेवा थी वो नहीं कर सकते हो तो आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, आप परिस्थिति के अधीन हो। और ये भी नहीं सोचना कि वो लोग आप फास्टिंग पे उतर जाएंगे वो हड़ताल करेंगे या फिर उनका पालन पोषण नहीं होगा क्या करें, नहीं कृष्ण विल हेल्प देम, कृष्ण वो लोग भूखे नहीं रहेंगे, कृष्ण उनको हेल्प करेंगे क्योंकि कृष्ण ने आपको निमित्त बनाया था। अब कृष्ण ने आपको निमित्त बनाने में थोड़ा वैकेशन दे दिया तो और किसी को निमित्त बनाएंगे, किसी और को बनाएंगे, यू नो नीड टू डू फॉर इंपॉर्टेंट।
ठीक है,
और कोई प्रश्न?
प्रभु जी कोई भक्त भगवान के पूर्ण शरणागत है तो कैसे?
सॉरी मैं समझ नहीं पाया। आपका म्यूट हो गया प्रभु। यस अभय गौरव प्रभु आपका प्रश्न में समझ नहीं पाया।
हरे कृष्ण प्रभु कोई भक्त भगवान के शरणागत है वो कैसे पता चलेगा?
तो कैसे पता चलेगा? देखो शरणागति की अलग अलग स्टेज, कोई पूर्ण रूप से शरणागत होता है, कोई कुछ प्रतिशत होता है, कुछ प्रतिशत होता है। भक्त को खुद को पता पड़ेगा कि मैं कितना शरणागत हूँ, या गुरु आपको बता सकते हैं कितना शरणागत। कोई भक्त भगवान के शरणागत है या नहीं है वो तो उसके आचरण से ही आप समझ सकते हो कि उसका आचरण किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से चलता है, बोलता है, किस प्रकार की उसकी सोच है, किस प्रकार से वो डिसीजन लेता है, किस प्रकार से अपने आप को सेवा में लगाता है, ये सब खुद ही दिखाते हैं कि वो कितना शरणागत है भगवान को। क्योंकि उसमें ये सब चीज जो वैष्णव क्वालिटीज होती है वो देखने को प्राप्त होती है, अलग अलग प्रकार के जो दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तत्वगम ये सब चीजें हमने जो बताई छह लक्षण शरणागति के, वो सब उसके आचरण में दिखने को प्राप्त देखने को मिलती है। और सबसे अच्छा तो वो खुद भी समझ सकता है कि वो शरणागत है, या गुरु समझा सकते हो उसको, या भगवान उसको समझा सकते। बाकी शरणागति कितने मात्रा में है ये तो भक्त और भगवान या गुरु और शिष्य के बीच का आपसी मामला है, तो वो भी समझ सकते हैं। So, no more questions, huh? Very good. I was thinking this is a wonderful sloka, so there might be many questions. So, okay. So, we can have some exercise. एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप भक्तों के साथ, और उसके बाद फिर विल कंटिन्यू फर्दर फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 67 ऑनवर्ड्स। तो हम आपको थोड़ा समय देते हैं और इसमें आपको दो तीन प्रश्नों का अपना विचार उसके ऊपर प्रस्तुत करके बताना है। सो द क्वेश्चन इज कृष्णा को शरणागत होने का अर्थ क्या है, एक। दूसरा क्वेश्चन, शरणागति को लेकर के कुछ गलत फहमियां हो सकती है, तो गलत फहमियां क्या है, तो। और तीसरा, जब भगवान ने खुद ही अर्जुन को ये सब सिखाया था भगवद गीता के विषय में, तो अंत में फिर उसका त्याग करने को क्यों कह रहे हैं। तो इन
थर्ड वाला रिपीट करेंगे,
जब भगवान ने खुद ही स्वयं उन्होंने अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए थे पूरी भगवद गीता में, तो फिर अंत में खुद वो उसका त्याग करने को क्यों कह रहे हैं, सर्वधर्मान प्रत्येक जी के श्लोक से। ये तीसरा क्वेश्चन आप, आई कैन गिव लेट्स से 5 मिनट्स, आप उस पर विचार कीजिए। जो भक्त एक ही साथ बैठे हुए हैं वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, जो भक्त प्राइवेट चैट से डिस्कस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कम अप एंड वी विल नॉट बी एबल, हम सब सभी भक्तों से आंसर तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन रैंडमली किसी को पूछेंगे आप उसका उत्तर दीजिए। सो वी गिव 5 मिनट्स, आप आपस में विचार कीजिए। Just type 1 minute, anybody wants?
Prabhuji, 1 minute more, Prabhuji.
Okay. Yes, many people can speak.
Hare Krishna, Prabhuji.
Yes, Prabhuji. Aap se shuru karte
hain. Acha.
थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये अपने तीन प्रश्न किए थे। पहला था कि भगवान की शरणागति का आदर्श उदाहरण, कि हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि आदर्श तरीके से हम किस प्रकार भगवान की शरणागति एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसका उत्तर में मैं बोलूंगा कि हम जैसे कि लास्ट लोक में था कि ब्रह्मभूत अवस्था में आते हैं जब हम भगवान के ऊपर पूर्ण तरह आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, भगवान की स्थिति और हमारी स्थिति, और फिर हम भगवान की जो भक्ति करते हैं वो मेरे हिसाब से भगवान की शरणागति का आदर्श उदाहरण रहेगा। और भगवान की शरणागति का दुरुपयोग दूसरा प्रश्न था,
गलत फहमी।
हाँ गलत फहमी, तो उसमें उसका एग्जांपल देते कि कई भक्त जो है वो आलस हो जाते हैं क्रियाओं से, अपनी जो दैनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो जो उनके उसमें आलस का उपयोग करते हैं और नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो इस प्रकार से वो उसका भगवान की शरणागति का दुरुपयोग करते हैं कि भगवान जो है वो सब देख लेंगे, और फिर वो इस प्रकार से उसका दुरुपयोग करते हैं। और तीसरा था कि भगवान ने सारे धर्म बताए हमको और लास्ट में बोला कि इन सबका त्याग करो और मेरी शरण में आओ, तो इसमें ऐसा क्यों कहा भगवान ने? तो इसका अर्थ है कि जैसे कि हम सबको बताते हैं कि भाई आप उसकी यहां से हमें बॉम्बे जाना है, तो हम बोलते हैं कि आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, और ऐसे अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन फिर हम बोलते हैं कि भाई एक सही रास्ता ये भी है कि हम एक प्रकार से जैसे मेट्रो सुविधा है तो दिल्ली में कि वो आप पकड़ के तुरंत जा सकते हो वहां पे। उसी प्रकार भगवान ने जो है भक्तों को सबसे सरल मार्ग बताया कि ये सारे जो धर्म मैंने बताया उसके द्वारा भी मुझे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मेरी शरण में आप आ जाते हो सर्वधर्मान प्रतिज्ञ करके, तो आप मुझे शरणागति के द्वारा तुरंत प्राप्त कर पाओगे। बाकी सब रास्ते जो है उसमें आप थोड़ा कष्ट है और लंबा रास्ता है, लेकिन इस प्रकार से तुम तुरंत मुझे प्राप्त करोगे। तो ये मैं समझाऊं इस द्वारा।
So, now we request Priya Gopika Mataji. Is she there? Gopika Mataji can speak.
Yes, Prabhu, she is there.
Hare Krishna, Hare Krishna. कृष्ण को शरणागत का मतलब यही है कि उसकी शरण में गति होनी चाहिए, यानी शरण भी उसकी हो और गति भी उसकी हो, गति भी उसी में ही हो। कृष्ण के बारे में ही श्रवण कीर्तन हमें करना चाहिए और उसकी लीलाओं के बारे में ही सुनना चाहिए, तभी हम कृष्ण को बराबर से शरणागत हो पाएंगे। जब हमें ऐसा करेंगे तो ही हमें शांति मिलेगी और शरणागति भी उसमें ही मिलेगी। और कृष्ण को शरणागत में गलत कहने का मतलब यही है कि हमें कृष्ण के जो चार नियम हमने प्रभुपाद ने दिए है उसको बराबर फॉलो करना चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम जो नियमों का पालन कर रहे हैं वो ही बराबर है, वो हम अपने तरीके से चलाए, एक माला एक दिन करे ना करे उसका कोई मतलब नहीं रहता। उसको बराबर फॉलो करते हैं तो ही हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमें शरणागत होने के लिए पूरी श्रद्धा से उसमें जुट जाना चाहिए। और कृष्णा ने जो बताया कि मेरे शरण में आओ, सर्वधर्मों का त्याग करो, तो हमें पूरी श्रद्धा और लगन के साथ ही उसमें जुड़ना चाहिए और तभी हम ये दलदल से बाहर निकल पाएंगे, वरना हम इसी में ही फंसते जाएंगे। और ओके प्रभु
Thank you. Very good. So, Adi Sevak Prabhu.
Hare Krishna Prabhu. First answer is to be fully in devotional service and do one's prescribed duties remembering Krishna. Second is, if I don't take care of myself, I will not be able to serve Krishna well. Or should I leave it to Krishna? Doubt. Third one, Krishna has shown us many ways, but they are all long drawn processes like karma yoga, nishtham karma yoga, bhakti yoga, do one's prescribed duties, remember Krishna. But the simplest and the easiest way is to surrender to Krishna.
Okay. Good. So, Padma Seva Mataji, is she there?
Yes, Prabhuji.
Hare Krishna. First question, sir. Guru Sadhu Shastra par purna vishwas hona एवं शरणागति के जो छह लक्षण बताए हैं उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना. और सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर, गलत फहमी जैसे माता जी लोग जैसे हम कुक करना नहीं चाहते, आज हम कुक नहीं करेंगे, भगवान हमें ऐसे ही प्रसाद दे देंगे, यो शरणागति. तो इसमें कहते हैं कि भक्त मूर्ख नहीं होता है, उसे उचित प्रयास करना चाहिए कृष्ण पर निर्भर रहकर, और अत्यधिक संघर्ष नहीं करना है उसमें, मतलब कृष्ण पर निर्भर रहकर करे भले संघर्ष नहीं. एंड थर्ड क्वेश्चन आंसर उसका, इसमें ये बताया कि कर्म का त्याग करने का नहीं बोल रहे हैं, केवल जैसे अहंकार है, आसक्ति है, भोक्ता भाव है, उसको छोड़कर खाली कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, चाहे वो युद्ध लड़ने क्यों ना हो. इसमें एग्जांपल है जैसे प्रभुपाद जी का, जिन्होंने अपने शिष्य को जैसे विकट परिस्थिति में भी प्रचार करो, धाम में रहकर जैसे सेवा करो वगैरह. थैंक यू.
Thank you. So, Kyo Chandra Prabhu.
Hare Krishna. Krishna ki charanagati mein jaise humko chintan karna chahiye, bhakt banna chahiye, puja karenge, namaskar karenge, aage rukna bola hai, man mana par bhakto wale mein. Aisa karne se hum शरणागति हो गए. गुरु साधु और शास्त्र का हमको विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, उससे हम भक्तों का संग करने से भी हमारे शरणागति होगी. दूसरा क्वेश्चन है, पापी लोग शरणागति नहीं ले सकते, ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे पाप नष्ट करेगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भी कोई भी पापी आता है तो भी वो हमारी रक्षा करते हैं, तो भगवान पापी हो या नहीं पापी हो तो भी सबकी रक्षा करते हैं, सबके लिए सब समान है भगवान, भगवान के लिए. तीसरा है, भगवान अलग अलग मार्ग को बताया है तो वो कैसे काम करता है, जैसे इसने बताया है कि ये शॉर्टकट है, जैसे हमारा टाइम बच जाता है, सीधी भक्ति हम करते हैं, भक्ति योग ज्ञान ध्यान योग, उससे हम शॉर्ट टाइम में भगवान के पास जा सकते हैं, जैसे लिफ्ट है तो फर्स्ट माले पे सीधी फिफ्थ पे भी जा सकते हैं, दूसरी सेकंड थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा फिफ्थ पे जाके भजन दबाएगा तो सीधा फिफ्थ पे पहुंचेगा, उसी तरह हम सीधा ऊपर जा सकते हैं भगवान की सेवा के लिए.
ओके, नंदन आचार्य प्रभु.
हरे कृष्ण जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. सो प्रथम प्रश्न का उत्तर तो है कि शरणागति का अर्थ क्या है. सो इसका मतलब ये है कि भगवान यहाँ पर हमको कागे बदलने का या कागे बंद करने का नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारी चेतना बदलने की बात बता रहे हैं. सो सभी कार्य में हमको केंद्र में कृष्ण को रखना है और इस मनोभाव से कार्य करना है कि अपने आप को निस्सहाय मानना है और जीवन की सभी प्रगति के लिए कृष्ण के ऊपर ही हमको अवलंबन रहना है। तो मेरे मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से भगवान शरणागत का यहाँ पर अर्थ बताए। दूसरा प्रश्न जो है उसका उत्तर ये है कि भगवान अर्जुन को सब कुछ बताने के बाद त्याग करने को क्यों कहा है। सो भगवान ने जो भी कर्म जो ज्ञान जो ध्यान अष्टांग बताया वो मार्ग है, लेकिन इससे हम बहुत अनेक बहुत समय के बाद हम प्रगति कर सकते हैं। और भगवान अर्जुन को ये भी बताया था कि भक्ति के द्वारा ही हम कृष्ण को जान सकते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर बताते हैं कि तुम सभी मार्ग को त्याग करके तुम केवल मेरे अकेले की शरण में आ जाओ। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर उनके शरणागत के लिए बता रहे और सब कुछ छोड़ने के लिए बोल रहे। और सो हो गया प्रभु जी।
यस थैंक यू।
हरे कृष्ण।
राधा जी माता जी राधा लीला माता यू कैन स्पीक। ओके पद्मिनी चंद्रिका माता यू और हरिवंश प्रभु के साथ
जी प्रभु। हरे कृष्ण।
हाँ बोलिए माता जी बोले।
माता जी बोलेंगे। चलो मैं ही बोल देता हूँ। प्रभु जी भक्ति कृष्ण पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा प्रेम हो ही जोइए एटले पूरेपूरु शरणागत थई शकीए। शरणागत थवू ए भक्ति ते भक्ति ने अनुकूल होय एवू करू, जेम के भक्तों नो संग रीडिंग हियरिंग चेंटिंग। शरणागत नो अर्थ एक ए पण थाय के सर्व संजोगोमां भगवान ना रक्षण मां रहेवू, गुरु नो आदेश भगवान नो आदेश छे एम मानीने गुरु ना आदेश ने फॉलो करवू। भगवाने अर्जुन ने दरेक योग कर्मयोग अष्टांग योग ध्यान योग बधु बतावे छे, परंतु छेल्ले एम ज कहे छे के बधु छोड़ीने सौथी सरल मार्ग ए छे के सर्व धर्म परित्याज्य बधा धर्म सुने छोड़ीने तू मारा शरण मां आवजो।
ओके ओके लास्ट रमाकांत प्रभु।
यस सो जैसे कि यहाँ पे परपोर्ट में श्री प्रभुपाद ने हरि भक्ति विलास से लिया है, तो वन ऑफ मोस्ट आई फील दैट राक्षसी यदि विश्वास हो दैट कॉन्फिडेंस होना वो है कि कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे कोई भी परिस्थिति में है। तो दैट इज द मेन थीम आई थॉट ऑफ व्हाइल दिस क्वेश्चन केम अप कि कोई भी परिस्थिति में जैसे भी है in other so called good circumstances or so called bad circumstances Krishna is there always there to protect us as our supreme father. That is the first rahi baat wrong conceptions or misconceptions, that is second part ki I mean kuch log isko galat tarike se aisa le sakte hai ki jo bhi occupational duty jo bhi karya kar rahe usko chhod ke all of a sudden just take a shift and completely surrender, क्योंकि कृष्ण तो सरेंडर करने वाले है ही, या फिर अभी क्योंकि कृष्ण के हम शरणागत हम डिवोटीज है तो लेट इज नॉट फॉलो द मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड गो आउटसाइड एंड डू हरि नाम, क्योंकि कृष्ण तो है ही सरेंडर करने कृष्ण तो है ही हमें रक्षा करने वाले बिकॉज हमने उनको सरेंडर किया, तो दैट इज काइंड ऑफ रॉन्ग और इमेच्योर कंसेप्शन विच आई कैन नेम या सो ये है। And regarding third part, like, I mean, Krishna is, I mean, पूरे भगवत गीता में बहुत ही like, you know, as a कर्मा कांड से लेके भक्ति योग तक कृष्ण ने सिखाया, but we don't have time for this because कलयुग में life 100 साल भी कम है, I mean, no one, I mean, nowadays lives for 100 years. So for that it is very easy to take up this process. हालांकि other process में बहुत ही ज्यादा ऑस्टेरिटीज है, तपस्या है, एंड एट द सेम टाइम रिजल्ट मिलना ना मिलना वो मुश्किल है. तपस्या की थी बट एट द सेम टाइम टू स्टार्ट अगेन उनकी भंग हो गई. तो बट कृष्णा इन सेकंड चैप्टर में कहते हैं कि जितना भी किया है आपने उससे आप वहां से स्टार्ट करोगे. सो इट देयर इज नो लॉस.
थैंक यू वेरी मच. सो वी रैंडमली सिलेक्टेड डिवोटीज, अगर आप में से जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है उसमें से कोई अगर बोलना चाहे सो वेलकम. एक या दो
हरे कृष्णा प्रभु.
हाँ बोलिए.
हाँ पहला जो प्रश्न था कृष्ण को शरणागत, उसका मतलब उसका अर्थ यही है कि भगवान से अलग हमारी कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए. भक्त के जो छह लक्षण होते हैं इसी हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए. दूसरा प्रश्न था शरणागति के लगती गलत फहमी. जो गलत फहमी यही होती है कि जब सब भगवान को शरणागत हो गए हैं हम तो हमें क्या करने की जरूरत है, भगवान ही हमारा सब कुछ कर लेगा. तो फिर सब कोई कोई लोग तो जीवन निर्वाह के लिए प्रयास करना भी बंद कर देता है. तीसरा सवाल यही था अर्जुन भगवान को भगवान अर्जुन को अलग अलग बताते हैं फिर भी खुद त्याग करने को क्यों कहता है. तो इसमें यही मैं बोलना चाहूंगी कि भगवान अर्जुन को अलग अलग मार्ग बताते हैं. वो जो निष्काम कर्म योग अष्टांग योग सब कुछ वो जो सब पद्धति है वो बहुत लेंदी है. इसके हिसाब से अगर कलयुग में मनुष्य की आयु तो कम है तो अगर जो इसी हिसाब से करेंगे तो भगवान तक हम नहीं पहुंच पाएंगे. इसलिए भगवान बोलते हैं कि अहंकार और आसक्ति सबका त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मेरी प्रेम भरी भक्ति द्वारा मुझे पा सकते हैं आप.
ओके थैंक यू वेरी गुड. और कोई बोलना चाहते हैं?
हरे कृष्ण प्रभु जी. दैवराम और मेरी ओर से मैं बोलना चाहती हूँ. जैसे पहला क्वेश्चन है सरेंडर करने का मतलब, एक तो हरिभक्त विलास के अंदर जैसे बताया वो उसके पालन करना है और गोपियों वाला भाव होना चाहिए. जिस तरह से कि एक बार भगवान ने जैसे बीमार होने का नाटक किया था और बोला कि उनके जो चरण की धूल है उससे वो ठीक हो जाएंगे. सो गोपियां डिड नॉट इवन थिंक फॉर अ सेकंड कि हमारा क्या होगा क्योंकि दे हैड फुल फेथ इन गॉड. इतना दृढ़ विश्वास था कृष्ण पे तो जो भी होगा दे वर रेडी टू एक्सेप्ट. तो हमारी श्रद्धा इतनी प्रकार की होनी चाहिए कि दे शुड नॉट बी अ सेकंड थॉट कि भाई नहीं, दैट इज सरेंडरनेस, टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल अटैचमेंट. कोई भी प्रकार का अटैचमेंट मतलब जो फल जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव कुछ भी आए तो वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट एज कृष्णास विल. सो दैट कम्स अंडर सरेंडरनेस. गलतफहमी का यह है कि कभी कभी हम टेम्पल में कहीं कोई अन्य टेम्पल में भी जाते हैं वहाँ पे देर आर पीपल हु मिसगाइड अस कि हाँ आप तो डिवोटी हो तो आपको ऐसे दान देना चाहिए ये वो बोलते हैं और वो एक्चुअली दान नहीं होता है, वो अपने पॉकेट में डाल देते हैं एंड दे से कि नहीं आपने तो बोला कि आपने सरेंडर किया है तो आप क्या कर रहे हो. बट शुद्ध भक्त जो भी होता है ही नोज कि जो ब्लफ कर रहा होता है ही इज वेरी वेल एबल टू आइडेंटिफाई सच पर्सन. और थर्ड क्वेश्चन जहाँ पे भगवान ने बोला हुआ है ऐसे अपने लेक्चर में बताया कि ऑल्दो डिफरेंट पाथ बताएं और फिर भी ये इजिएस्ट पाथ है. ये इसलिए बताया क्योंकि अपार्ट फ्रॉम डिवोटीज देर आर अदर पीपल आल्सो हु आर रीडिंग इट. सो उनके नॉलेज के लिए भी ये आना चाहिए कि चाहे वो मायावादी हो या जो भी हो उनके भी ध्यान में आना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट वे ताकि दे आल्सो चेंज द थिंकिंग और दिस इज द बेस्ट वे एज पर लॉर्ड्स थिंकिंग. भले भगवान ने अलग अलग मार्ग बताया वो पर वो स्वयं जो इच्छते हैं वो ये मार्ग है. इस हिसाब से I understood in this way, Prabhuji.
Very good. Well, yes, Krishna is so kind. कई बार भक्त जो होते हैं वो भगवान के प्रति उनका प्रेम के कारण भगवान के आदेश को कभी नहीं मानते और परिणाम ये आता है कि भगवान उनसे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं. इसलिए भगवान को वो लोग पसंद होते हैं जो उनका पालन करते हैं और भगवान
उन लोगों से 10 गुना ज्यादा पसंद होते हैं जो उनके प्रेम भगवान के आदेश को नहीं मानते। सो दिस इज कृष्णस नेचर। इस तरह से हम भगवान को शरणागत होने का प्रयास करेंगे और वी हैव टेकन दिस एक्सरसाइज के लिए कि किस तरह से शरणागति शब्द को लेकर के भक्त का जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। सो नाउ वी कैन कंटिन्यू भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती में कहते हैं कि कृष्ण ऐसा कहते हैं कि पहले मैंने ऐसा देखा कि तुम भक्ति की योग्यता प्राप्त नहीं किया, लेकिन इसलिए उस समय मैंने कहा था यत करो सीधा स्वामीदा से पूछ करते हो, दान करते हो, वो करते हो, सब मुझे अर्पण करते करो। तो एक्चुअली वो प्रकार कर्म मिश्र भक्ति थी, लेकिन अब मैं मेरी स्पेशल कृपा तुम्हें देना चाहता हूँ और वो है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है सब प्रकार से सब चीजों से मुक्त। मैं मेरा खुद का जो जो नियम है वो तोड़ रहा हूँ। क्या नियम? ये है कि शुद्ध भक्ति केवल मेरे भक्त की कृपा से प्राप्त हो सकती है, ये नियम है। लेकिन मैं तुम्हारे कारण अर्जुन वो नियम तोड़ रहा हूँ और मैं स्वयं तुम्हें ये दे रहा हूँ। क्योंकि मैं कई बार भक्तों के लिए नियम तोड़ देता हूँ, जैसे मैंने भीष्म के लिए नियम तोड़ दिया था, इसलिए मैं अपने बनाए गए नियम भक्तों की प्रसन्नता के लिए कई बार तोड़ देता हूँ। सो दिस वे वन शुड अंडरस्टैंड कि कृष्ण वांट्स अर्जुन टू फुली सरेंडर टू हिम। कृष्ण ने एक रूप से देखा जाए तो भगवद गीता समाप्त कर दी यहाँ पर। अब क्या करना चाहिए इस ज्ञान को? कृष्ण ने अभी जो ज्ञान बताया कि ज्ञान रूपी जो रत्न है उसका क्या करना चाहिए? उसको कहीं अलमारी के अंदर रख, कोई एकदम किसी जगह पर रखकर उसको लॉक मार देना चाहिए, सीक्रेटली कहीं रखना चाहिए, या फिर पब्लिक में जाकर सबको बांटना चाहिए? अगर हम सबको बांटे तो किसको बांटना और किसको नहीं बांटना चाहिए, कौन इसको समझने के लिए क्वालिफाइड है? अगर समझ लो कोई व्यक्ति क्वालिफाइड है या नहीं है, अगर हम बांटते भी और उसको सुनता है कोई, पढ़ता है या प्रचार करता है ये भगवद गीता का, तो इस सबको क्या परिणाम प्राप्त होगा? इसका इसका श्रुति फल क्या है? ये पूरी भगवद गीता जो है उसका श्रुति फल, जैसे हर एक कथा के बाद या हर एक डिस्कशन के बाद ऐसा बताया जाता है ना शास्त्र में है कि श्रुति फल, ये पढ़ने या स्टडी करने से या सुनने से आपको क्या लाभ मिलेगा। तो ये पूरी भगवद गीता का अंत, अभी अंत पढ़ रहे हैं हम, मोस्टली हम आज समाप्त करने करेंगे सेकंड मॉड्यूल आपका। तो श्रुति फल क्या है? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आने वाले कुछ श्लोकों में है। सो वी कैन स्टार्ट टेक्स्ट नंबर 67।